स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 16 मई और दिन गुरुवार। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 24 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करने का दिया आदेश। ममता ने कहा बीजेपी के आदेश पर हुआ सब कुछ।
सॉरी मिस्टर इलेक्शन कमीशन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ योर वेंडेटा।
वाम दल क्या बंगाल में अपनी खोई जमीन दोबारा पा सकेंगे? पूर्व स्पीकर मीरा कुमार से होगी खास बातचीत।
जहां तक भाजपा का सवाल है, उसने निस्संदेह राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया है। वो कहां थे उस समय जब हम इस देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे?
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी साइबर हमले की स्थिति में अमेरिकी कंप्यूटर्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस आदेश के तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन विदेशी टेलीकॉम सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रंप ने अपने आदेश में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम विशेष तौर पर चीन की टेलीकॉम कंपनी ख्वावे को लेकर उठाया है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को देखते हुए आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान खत्म करने का फैसला किया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के एडीजी सीआईडी राजीव कुमार और गृह विभाग के प्रधान सचिव अत्री भट्टाचार्य को भी हटा दिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होना है और सामान्य स्थिति में इन पर चुनाव प्रचार 17 मई की शाम 5 बजे खत्म होता, लेकिन चुनाव आयोग ने 19 घंटे पहले ही ऐसा करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के इशारे पर ही चुनाव आयोग ने समय सीमा से पहले रैली और सभाएं करने पर रोक लगाई है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनावी सभाओं और रैलियों पर रोक का फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी को चुनाव प्रचार खत्म करने का पूरा समय दिया गया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग को कोलकाता की हिंसा के लिए अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान में सत्तारूढ़ मिलिट्री काउंसिल ने लोकतंत्र समर्थक नेताओं के साथ बातचीत 72 घंटे के लिए टाल दी है। जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने टेलीविजन पर अपने संदेश में कहा कि राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जो अवरोध लगाए हैं उन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। इससे पहले प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा था कि सेना ने शर्त रखी है कि जब तक सड़क पर अवरोधों को नहीं लिया जाता तब तक बातचीत नहीं होगी। यमन में हूती विद्रोहियों के एक नेता ने बीबीसी को बताया है कि सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन पर हमले का ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि तेल पाइपलाइन को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया और ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं है। यमन में ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है। मोहम्मद अली अल हूती ने कहा, हम ईरान के एजेंट्स नहीं हैं। अगर हम होते तो हम अभी आपसे बात नहीं कर रहे होते। हम चाहते हैं कि हम पर हमले रुकें। हम खुद से फैसला लेने में सक्षम हैं। अगर वो हमारे खिलाफ हमले रोक देते हैं तो हम भी उन पर मिसाइल हमले रोक देंगे। ये थे हूती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल हूती के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील में उच्च शिक्षा के बजट में भारी कटौती के विरोध में छात्रों और शिक्षकों ने देशभर में सड़कों पर प्रदर्शन किया है। राजधानी ब्रासिलिया में तकरीबन 15,000 प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, मेरी किताबें ही मेरा अधिकार है और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता को बजाय रखने और सरकार की घोषणा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हूं। दुर्भाग्य से शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। जो कुछ बचा है वो है हिंसा। ये थे प्रदर्शन में शामिल एक महिला के शब्द। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। मई की 16 तारीख और दिन है गुरुवार। इस वक्त भारत में हो चुके हैं 6:34:40। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कोलकाता में चुनावी हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं कल चुनावी गलियारों में छाई रहीं। हिंसक घटनाओं के लिए बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर दोष मढ़ा, तो वहीं टीएमसी ने इसके लिए केंद्र सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। अंत में चुनाव आयोग ने इस हिंसा को देखते हुए गुरुवार यानी कि आज रात 10 बजे के बाद से चुनाव प्रचार खत्म करने का फैसला सुनाया है। हालांकि चुनाव 19 तारीख को होने हैं तो 17 यानी कल शाम 5 बजे तक प्रचार होना था। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ADG राजीव कुमार और प्रधान सचिव गृह आत्री भट्टाचार्य को भी हटा दिया है। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के दबाव में किया गया फैसला है। सबसे पहले सुनते हैं कि ममता ने क्या कहा।
सॉरी मिस्टर इलेक्शन कमीशन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ योर वेंडेटा एंड योर अनप्रेसिडेंटेड decision because Nirmala ki jano namta Sitaraman yesterday she met you and she said campaigning band kar do CM ka bola ki nahi bola tha so all the president we have with us how you are working because of the BJP pressure Bihar mein kya ho raha hai UP mein kya ho raha hai kitna logo ko killings kiya hai kya kiya hai unhone जम्मू कश्मीर में कितना लोगों को किलिंग्स किया है क्या एक्शन ले लिया उन्होंने त्रिपुरा में आपने को वोट करने ही नहीं दिया पूरा डिगिंग किया हरियाणा पूरा डिगिंग किया गुजरात में पूरा डिगिंग किया क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए गुजरात में सेंट्रल फोर्स नहीं जाएगा मोदी को जिताने के लिए उधर में स्टेट पुलिस को देके करेगा महाराष्ट्र में भी स्टेट पुलिस को देके करेगा बिहार में भी ओनली 25% एंड बंगाल 110%।
तो जैसा कि आपने सुना ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने बीजेपी सरकार और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के इशारों पर यह सब कुछ किया है। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग का ये फैसला कितना सही है और चुनावी हिंसा का कितना असर बंगाल के मतदाताओं पर पड़ सकता है, यही सवाल पूछा हमारे साथी नवीन नेगी ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार रजत रॉय से।
देखिए ये तो उनका आरोप है ना, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उनको तो और भी कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तो कुछ पहले ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का अंदर RSS लोग बैठे हैं, वो बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्देश पे काम कर रहे हैं, वो सीधा चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन को, बोले कि आप चाहे तो हमें 50 बार शोकस कर सकते हो, हमें जेल में डाल सकते हो, लेकिन मैं रोकने वाला नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। तो इसको तो आरोप है कि बीजेपी के निर्देश के काम कर रहे हैं, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन खत्म होते ही वो सबका कैंपेन बंद कर रहे हैं, ये इनका कहना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो बोझ जो सोच है वो तो उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसको मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको चाहे कोई पॉलिटिकल ना चाहे उनका उनका अपना अपना विचार हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो इलेक्शन कमीशन जो काम किए है वो उनका पावर के बाहर कुछ किए है, वो पावर के मुताबिक काम किए
जी। और पश्चिम बंगाल में हर चरण के चुनाव में जो है हिंसा हमें देखने को मिली है, कितनी बड़ी चुनौती है ये वहाँ की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और सुरक्षा बलों के लिए भी, अपने आप में चुनाव आयोग के लिए भी।
एक बात पहले मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम मतलब चुनाव का निर्देशिका चालू होने के बाद सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इलेक्शन कमीशन का अंडर में होता है, मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन का अंडर में होता है। इसी कारण जब होम सेक्रेटरी ने चिट्ठी भेज के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ कदम उठाए, उनको तुरंत उनको वहां से हटा दिया गया, आज जो किया गया ना, कारण यही है कि उन्होंने चिट्ठी भेज के बोला कि ये काम नहीं कर रहा आपका CRPF सेंट्रल फोर्स, आपको ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, उन लोग बहुत सारे मतलब मुश्किल पैदा कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, आप उनको रोकिए। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन का तो अंडर में होता है, होम सेक्रेटरी पुलिस सब इलेक्शन के टाइम, वो खुद कैसे इलेक्शन कमीशन का खिलाफ बोल सकते हैं, इसीलिए उनको हटा दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर जब इलेक्शन चालू रहे तो उस टाइम तो इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
जी।
अभी इन लोग कर पाते कि नहीं वो तो देखने का है। पहले एक जमाना था जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा खराब होता था, लेकिन हालत ऐसा बन गया कि बिहार सुधर गया लेकिन बंगाल तो नहीं सुधरा अभी तक।
और जिस तरीके से अमित शाह के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, तो तमाम जो दल हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमला वो करवा रहे हैं या हिंसा जो है दूसरे दल करवा रहे हैं। मतदाताओं पर कितना बड़ा असर आपको दिखता है इस हिंसा का?
देखिए, अगर मैं साफ बोलूं तो नॉर्थ कलकत्ता जो जहां से अमित शाह का जो जुलूस जो रोड शो जो गुजर रहे थे ना, जहां हंगामा हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस के सामने कॉलेज स्ट्रीट पे, वो नॉर्थ कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। वहां पे विद्यासागर का जो मूर्ति जो तोड़फोड़ किया गया ना या और भी कुछ हुआ, इनके कोई असर पड़ने वाला नहीं, इसीलिए कि विद्यासागर के बारे में वहाँ के सारे ज्यादातर उनका नॉन बंगाली वोटर्स है, ज्यादातर उन लोग काम धंधे उनका बिजनेस है और कुछ ऐसा है, कुछ मतलब बस्ती है जैसे झुग्गी झुग्गी है, वहाँ पे लेबर क्लास है, इन सब के लिए विद्यासागर के नाम का कोई महत्व नहीं है, समझे ना। उसका मतलब उनका मूर्ति तोड़े या ना तोड़े इससे कुछ असर चुनाव में नहीं आएगा। और चुनाव के पहले जो दोनों पार्टी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा ये तो चल ही रहा, और इसके शायद एक ही फायदा होगा, बीजेपी मतलब कलकत्ता का रास्ता पे सड़क पे आके टीएमसी का मुकाबला कर रहा है, इसके शायद उनका ये होगा कि जोश आ जाएगा कि हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे टीएमसी को चैलेंज कर सकते, ऐसा शायद कुछ होगा। बाहर जाके बंगाल का दूसरे जगह जादवपुर में शायद विद्यासागर के बारे में जो होगा उसका असर होगा, कुछ टीएमसी का फेवर में जाएगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रजत रॉय, उनसे बात कर रहे थे नवीन नेगी। पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक सत्ता में रहने वाली सीपीएम एक दशक से सत्ता से बाहर है। आम चुनाव में सीपीएम ने 40 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो क्या इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीपीएम के दोबारा जिंदा होने के कुछ आसार हैं? बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद कोलकाता में सीपीएम के लोगों से मिले और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी।
वामपंथी दलों के कार्यकर्ता कोलकाता में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस हिंसा का जिम्मेदार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों को ठहराते हैं। क्या ये वामपंथी दलों को राज्य में दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश है? आम धारणा ये है कि पार्टी की सियासी मौत हो चुकी है, लाल झंडा झुक चुका है, कॉमरेड लेनिन और स्टालिन को भूल चुके हैं, इसके कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी घट चुकी है। ये कोलकाता में सीपीएम का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर एक समय था जब लोगों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, कई मीटिंग्स हुआ करती थी और फरियादी भी यहाँ पर आते थे अपनी फरियाद लेकर। यह है मीटिंग हॉल जहाँ पर इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। 34 साल राज्य करने के बाद क्या ये संभव है कि सीपीएम की वापसी हो सकती है? पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं वो कमज़ोर ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी भी जिंदा है, जैसा कि सीपीएम कार्यकर्ता हिमग्न राज कहते हैं।
ये बात 100% सही नहीं है कि सीपीआईएम पार्टी का वामपंथियों का कमर टूट गया। हमारा संगठन पहले जैसा नहीं रहा लेकिन अभी भी है, यंग जनरेशन पार्टी के साथ है।
सीपीएम की एक और कार्यकर्ता मीनाक्षी मुखर्जी कहती हैं,
हर मुद्दे पर जो मुद्दा नौजवान से जुड़ा हुआ है उसी मुद्दे पर सड़क पर हम लोग उतर रहे हैं। लोग अपना रोजमर्रे जिंदगी पकड़ जो उन लोगों का जाति समस्या है उस समस्या से हम लोगों को जुड़ पा रहा है, हम लोगों को उन लोगों का नज़दीक पा रहा है, इसीलिए हम लोगों के साथ है।
वामपंथी मोर्चे ने राज्य की 42 सीटों में से 40 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मीडिया की जगमगाहट से परे जादवपुर से सीपीएम के उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कोलकाता के मेयर रह चुके विकास भट्टाचार्य की निकटतम प्रतिद्वंदी और फिल्म स्टार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मिमी चक्रवर्ती हैं, लेकिन वो किसे अपना खास विरोधी मानते हैं?
हमारा प्रतिद्वंद्व है आरएसएस। बंगाल में आरएसएस का दो पंक्ति है, एक है बीजेपी और एक है टीएमसी। दोनों ही आरएसएस को जो स्क्रिप्ट, आरएसएस का स्क्रिप्ट पर दोनों ही खेल रहे हैं। जिस आइडियोलॉजी का बेसिक है धर्म पर राजनीति, धर्म पर देश बांटना, अगर हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाए तब तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोअर लेवल कमरेड को। जैसे विलेजेस में, रूरल एरियाज में पीपल उभर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वामपंथी इस चुनाव में करीब करीब 10-12 सीट मिलेगा। मे बी ये ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन ये एम्बिशन भी अगर ठीक ढंग से चुनाव पीसफुल पोस्टिंग कास्टिंग हो तो मेरा एम्बिशन मिल जाएगा।
विशेषज्ञ कहते हैं कि एक दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद पार्टी ने खुद को दोबारा जिंदा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन पार्टी के अनुसार उन्होंने सुधार लाया है, सोशल मीडिया के सहारे युवाओं से जुड़ने की कोशिश की है। सीपीएम के नेता और पोलिट ब्यूरो मेंबर बीमन बोस कहते हैं,
वाम मोर्चे का ओर से सारे 42 सीटों में कंटेस्ट नहीं करते हुए भी उससे कमी नहीं होगा, थोड़ा बांट सकता है।
लेकिन मीडिया पार्टी के इन कामों को नजरअंदाज करती है।
जो राइटिस्ट पार्टी का बारे में मीडिया जितना जितना कवर करते हैं और लेफ्ट का बारे में उतना ही उसको पीछे फेंक देते हैं।
पिछले चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें हासिल की थी, इस बार ये 10 सीटें हासिल करने का दावा करती है, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार सुविजित बागची ने हमें बताया,
2011 से लेकर 2017-16 तक का ट्रेंड आप देखें तो लेफ्ट का वोट करीब 40% के ऊपर था और आज के डेट में वो 20% के नीचे है। तो इसका कोई ग्राउंड लेवल में इंडिकेशन हमको नहीं दिख रहा है कि लेफ्ट का वोट सडनली बढ़ रहा है।
सीपीएम को आशा है कि इसका वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को कड़ी टक्कर दे रही है। जुबैर अहमद, बीबीसी कोलकाता।
और पश्चिम बंगाल के बाद अब चलते हैं बिहार। बिहार के सासाराम में लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में मतदान होना है। सासाराम को हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से जगजीवन राम 8 बार सांसद रहे, उनकी बेटी और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी यहां से 10 साल तक सांसद रहीं। लेकिन पिछले साल मीरा कुमार को भाजपा के छेदी पासवान से करीबी हार झेलनी पड़ी। इस बार के चुनाव के लिए मीरा कुमार कितनी तैयार हैं और एक नेता के तौर पर वो अपना मूल्यांकन किस तरह से करती हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार के साथ मीरा कुमार की ये खास बातचीत।
हम खुद का मूल्यांकन करते हैं तो हमें लगता है कि दो चीजें इस देश से समाप्त होनी चाहिए हमेशा के लिए। एक तो गरीबी, आर्थिक पहलू अगर हम देखें अपने देश का तो गरीबी समाप्त होनी चाहिए, और दूसरा है जाति पाति। अगर हम अपने देश का सामाजिक पहलू लें, इन दोनों को समाप्त करने में हमारी मुहिम लगातार चलती रही है।
आप मैम कह रही हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए और इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है, वाकई में खत्म होनी चाहिए। एक लोकतंत्र के लिए जाति तो कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ही के पार्टी अध्यक्ष कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ।
पार्टी के अध्यक्ष
जी राहुल गांधी।
अच्छा, ये उन्होंने कब कहा, किस परिस्थिति में कहा या किसी और ने कहा, ये सब बहुत सी बातें हैं, इस पर विचार टिप्पणी देना मैं नहीं चाहती हूँ।
एक और बात है कि जैसे कांग्रेस सेकुलरिज्म को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का जैसे मजाक उड़ाया, बीजेपी ने राष्ट्रवाद के साथ भी वही सलूक किया, क्या आप इस बात से सहमत हैं?
बिल्कुल सहमत नहीं हो। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का हृदय से पालन किया है और इसमें विश्वास किया है। हम उसका मजाक उड़ाएं ये तो सवाल ही नहीं उठता है। हम धर्मनिरपेक्ष ही नहीं, हम दूसरे, अगर मैं किसी धर्म को मानती हूँ तो अगर मैं सही अर्थ में कांग्रेसी हूँ और सेक्युलरिस्ट हूँ तो मैं दूसरे धर्म को केवल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, उससे केवल इक्विडिस्टेंट नहीं हूँ, मैं उसका सम्मान करती हूँ। ये है सेक्युलरिज्म और इसमें हमने विश्वास किया। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, उसने निस्संदेह राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया है। वो कहाँ थे उस समय जब हम इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमने बहुत कुछ दांव पर लगाया था उस समय ये कहाँ थे, आज ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बन गए हैं।
मैम एक महिला नेता हैं आप और दिग्गज महिला नेता हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए राजनीति कितनी मुश्किल है?
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और हम लोग सब हृदय में ठान कर आते हैं कि हमें बनाया ही गया है मुश्किल काम करने के लिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम महिला कैसे हैं? महिला का काम ही है जो काम सबसे मुश्किल है उसको आगे बढ़ कर के करना, वही महिला है।
एक आखिरी सवाल मैम आपसे कि राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो 22 लाख नौकरियां के जो नौकरियों के जो पद खाली हैं सरकारी नौकरियों को उनको भरेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि 22 लाख जो पद हैं ये पिछले 5 साल में तो खाली नहीं हुए हैं, ये पिछले कई दशकों की बात है। तो आप लोग जब सत्ता में थी तो आपने किया नहीं, जब सत्ता से बाहर होंगे तो फिर वादा करें, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे?
लोग हमें मानेंगे क्योंकि हमें 70 साल से देखते आ रहे हैं, 70 साल से लगातार हम काम करते आ रहे हैं, और हमने बहुत सी जो बातें की हैं हम उन्हें निभाते आ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि सब बातें हम शत प्रतिशत हम कर पाए हैं, वो कोई भी नहीं कर पाता।
ये थी लोकसभा की पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार, जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। बीते कुछ समय से सेना के राजनीतिकरण की खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उरी हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक हों या फिर पुलवामा हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक, हर बार सरकार और विपक्ष इस पर आमने सामने होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में शहीदों के नाम पर वोट करने की अपील तक कर चुके हैं। ऐसे में बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर गांव में, जहां लगभग हर परिवार से लोग सुरक्षा बलों में हैं। यहां मौजूद पूर्व सैनिकों के साथ बात की कुलदीप मिश्र ने।
इस चुनाव में बड़ी सेना को लेकर के बातचीत हो रही है, खासतौर से जो पुलवामा हमला हुआ, और विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से सेना के राजनीतिकरण की कोशिश की गई, सेना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए अपोजिशन का काम तो है कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन ये बताइए जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, तो जब यहाँ के 12 जहाज वहाँ पर गई थी बालाकोट में, अगर वहाँ पर कुछ पकड़ा जाता कुछ हो जाता तो किसकी बदनामी होती? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की इमेज जो था सब खराब हो जाती, लेकिन जब वो जीत गए तो उन्हीं को लोग बोलेंगे कि भाई प्रधानमंत्री ने बहुत साहसिक कदम किया।
क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना थोड़ी मजबूत हुई है?
बहुत मजबूत हुई है सेना, बहुत।
आपके परिवार से कोई सेना में है?
लड़का है, बाप पिता हमारा सब।
अच्छा, लेकिन एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तेज बहादुर यादव वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि खाने की दाल और उसके समस्या उठाया था।
वो गलत बात बोलता है, गलत बोलता है।
सहमत नहीं है आप उनकी बात से? बात भी गलत है, खाने की समस्या नहीं है कैसे?
नहीं, नहीं, नहीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार के वोटरों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि क्या वे पुलवामा के शहीदों के नाम अपना वोट दे सकते हैं। इससे पहले याद नहीं आता कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि शहीद के नाम पर वोट दें, तो क्या ये आपको परंपरा ठीक लगती है? आप लोग कैसे देखते हैं?
शहीदों के नाम पर वोट मांगने का जो परंपरा है ये वाकई में एक नया परंपरा है और एक सराहनीय परंपरा है।
क्या मतलब आपको क्या लगता है कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
सेना ही नहीं, जितनी देश की संस्थाएं हैं सबका राजनीतिकरण हो रहा है इस हुकूमत में। CBI, CGI जितनी भी संस्थाएं हैं सबका राजनीतिकरण हो रहा है।
आप इसको ठीक नहीं मानते हैं? क्या सर, आप कब थे सेना में, क्या नाम है आपका?
मैं शिवानंद सिंह, आर्मी मेडिकल कोर में 78 से 95 तक सेना में रहा।
तो आपको ये लगता है, अभी तक जितने लोगों से बात कर रहा था मैं, पहले आप मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है और ये ठीक नहीं है, थोड़ा समझाइए कि ये क्यों आपको लगता है कि ये अगर ये हो रहा है तो ये गलत परंपरा है, किस वजह से आपको लगता है?
इस पे तो शासन को अपनी गलती माननी चाहिए। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था कि इतने आदमियों को बाई रोड न भेजा जाए, मिलिटेंट्स इस क्षेत्र में छाए हुए हैं, तो उतनी गाड़ियों का सफर बिना पायलट, ये गलत था।
लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हमारे सैनिक, हमारे जवान शहीद हुए तो हमने बदला तो लिया उस तरफ जा करके।
उस तरफ जा करके ये हर शासनकाल में सेना को जो टास्क मिलता है सेना पूरा करती है, उसमें ये नहीं है कि भाजपा का शासन है तभी उस पार जा करके एक्शन हो रहा है, ये एक्शन सबके समय में हुआ है।
एक्शन सबके समय में हुआ था, बता रहे थे एक पूर्व सैनिक। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और दिनेश अखबारों के साथ मौजूद हैं, बताएं दिनेश।
जी इकबाल, पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद चुनाव आयोग के फैसले को लगभग सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है बंगाल हीट ईसी फ्रीज। टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है पहली बार चुनाव आयोग ने सातवें चरण में बंगाल का चुनाव प्रचार एक दिन घटाया। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है बंग भंग शांति भंग मूर्ति भंग प्रचार तय समय से पहले। हिंदुस्तान की हेडिंग है बंगाल में एक दिन पहले प्रचार बंद होगा। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की यूनिट मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रन को फाल्कन स्लेयर्स यानी कि फाल्कन को मार गिराने वाला और एम्ब्रॉम डॉजर्स शीर्षकों के साथ नई पट्टियों से नवाजा है, यानी उनकी स्क्वाड्रन का सम्मान किया गया है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए फेसबुक ने नए नियम तय किए हैं। न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमले के बाद फेसबुक ने ये नियम कड़े किए हैं। जो यूजर ये नियम तोड़ेगा वो 30 दिन तक इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में बागपत के इंस्टीट्यूट में कश्मीरी छात्र की पिटाई की खबर है। बागपत के एक इंस्टीट्यूट में कश्मीरी छात्र ने बाहरी युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। छात्रों का दावा है कि वे कश्मीरी हैं इसलिए उनसे मारपीट हुई और कश्मीरी छात्र पर एक युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। इसके अलावा एक खबर है चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा ट्विटर इंडिया से कहा है कि एग्जिट पोल से जुड़े सभी ट्वीट हटाए जाएं। आयोग को कुछ शिकायतें मिली थी, इस आशय की कुछ शिकायतें मिली थी, इसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया है।
बहुत शुक्रिया दिनेश आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। शुरुआत करते हैं टेनिस से। अमरीका की दिग्गज सेरेना विलियम्स ने चोटिल होने के कारण क्ले कोर्ट पर जारी इटली ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता विलियम्स ने घुटने में चोट लगने के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर होने का निर्णय लिया है। सेरेना को प्रतियोगिता के दूसरे दौर में अपनी बहन वीनस विलियम्स से भिड़ना था। वहीं दूसरी ओर पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क की कैरोलिना को भी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। और अब चलते हैं हॉकी की ओर। हॉकी इंडिया ने स्पेन में 8 टीमों के बीच होने वाले टूर्नामेंट के लिए अपनी अंडर 21 पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 10 जून से शुरू होगा, जिसमें नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेजबान देश हिस्सा लेंगे। जूनियर टीम के कप्तान मनदीप को बनाया गया है और वहीं सुमन बेग को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। और अब जाने से पहले नेपाल की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने बुधवार को 23वीं बार माउंट एवरेस्ट की सफलता पूर्वक चढ़ाई की। वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर 23 बार पहुंचने वाले एक लौते पर्वतारोही हैं। पिछले साल वो 16 मई को 22वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बेस कैंप के अनुसार कामी ने मंगलवार रात को चढ़ाई शुरू की थी। वो बुधवार सुबह 7 बजे सबसे ऊंची चोटी पर पहुँच चुके थे। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी साइबर हमले की स्थिति में अमरीकी कंप्यूटर्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को देखते हुए आज रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान खत्म करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर ही चुनाव आयोग ने समय सीमा से पहले रैली और सभाओं को करने पर रोक लगा दी है। सूडान में सत्तारूढ़ मिलिट्री काउंसिल ने लोकतंत्र समर्थक नेताओं के साथ बातचीत 72 घंटे के लिए टाल दी है। जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने टेलीविजन पर अपने संदेश में कहा कि राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जो अवरोध लगाए हैं वो जल्द से जल्द हटा लिए जाएंगे। ब्राजील में उच्च शिक्षा के बजट में भारी कटौती के विरोध में छात्रों और शिक्षकों ने देशभर में सड़कों पर प्रदर्शन किया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।